जुड़ना, एक होना, उसको कहेंगे योग। तो योग को समझना मुश्किल नहीं, इट इज अ कम्युनिकेशन, इट इज अ मीटिंग। अब ये मीटिंग किसी की किसी के साथ भी हो, वो एक योग है। तो इसमें हम देखेंगे कि तीन प्रकार का योग होता है। एक योग है फिजिकल, दूसरा योग है मेंटल, और तीसरा योग है स्पिरिचुअल। तो फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, ये तीन प्रकार का योग कहलाता है। अब फिजिकल योग किसको कहेंगे? दो चीजों को हम जोड़ते हैं, है ना, दो चीजों को जोड़ते हैं तो वो भी योग हो गया। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के स्थान को क्या कहेंगे? लेबोरेटरी तो कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहते हैं प्रयोगशाला। तो वहां प्रयोग होते रहते हैं, A+B=C। तो एक का योग बी से हुआ तो सी निकला। योग ऑल्सो मीन्स एडिशन। हम हिंदी में ना जब कोई चीजें जोड़ते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं? कुल योग, टोटल सम। तो टोटल सम माना एडिशन किया और वो रिजल्ट उसकी क्या हुई, तो वो भी योग है। तो फिजिकल रूप से जिसके साथ योग होता है उसका मिलन हो जाता है उसमें। तो एक छोटा सा उदाहरण दिया है, नहीं सुनाई देता? कम करना है ज्यादा? सुनाई दे रहा है पीछे ना? तो छोटा सा मिसाल दिया है, जैसे हम अपने घर में लाइट चलाते हैं तो इसका कनेक्शन पावर हाउस से है। पावर हाउस से बिजली आती है और हमारे घर में लाइट चलती है, तो क्या कहेंगे कि हमारे घर का कनेक्शन पावर हाउस से हुआ और हमारे घर में बिजली आई। तो जिसके साथ कनेक्शन है उसके साथ संबंध हुआ और उसकी प्राप्ति हुई। हम रेडियो ऑन करते हैं, कोई रेडियो स्टेशन हमें चाहिए तो हम अपनी रेडियो की ट्यूनिंग करते हैं। तो जिस मीटर बैंड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ पर वो रेडियो स्टेशन आता है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, परंतु हमने अपने रेडियो पर जो रेडियो की सुई है वो वहाँ रखी उसी फ्रीक्वेंसी मीटर बैंड वेवलेंथ पर, तो वो आवाज़ अमेरिका हजारों मील दूर, वो आवाज़ हम अपने रेडियो पर सुन सकते हैं। अब ये भी योग है। दूध में चीनी मिलाते हैं तो दूध मीठा हो जाता है, तो चीनी का गुण दूध में ऐड हो गया तो वो भी योग है। तो फिजिकली योग समझना मुश्किल नहीं है। अब मेंटली भी हम योग देखें, मेंटली योग कैसे होता? हम किसको याद करते हैं, अब जैसे याद किया उसका हमें अनुभव होने लगता है और वो अनुभव तुरंत महसूस होता है। कोई ऐसी बहुत अच्छी बात हमने याद की, बहुत ही सुखद बात थी, उसको याद करते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। तो लोग पूछेंगे, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है, कुछ बात तो है नहीं, तो क्यों ऐसे मुस्कुरा रहे हो? तो आप क्या कहेंगे? कोई बात याद आ गई, याद आ गई तो जैसे वो मेरे सामने वो दृश्य आ गया। और उसके विपरीत कोई दुखद बात हो तो वो दुखद बात भी जैसे ही याद की तो वो एकदम दुख महसूस होने लगता है। तो वो अनुभूति तुरंत होती है, इट डजंट टेक टाइम। अब ये दो प्रकार का योग तो हम समझ गए, लेकिन जो तीसरे प्रकार का योग है वो सबसे ऊंचा योग है। वो योग है आत्मा का परमात्मा के साथ, इसको हम कहेंगे आध्यात्मिक रूप से योग। और इस योग को हम कहेंगे सर्वश्रेष्ठ योग। तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ सत्ता है परमात्मा, जो सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा है, उससे आत्मा का योग वो कहेंगे राजयोग, जो सबसे ऊंचे के साथ हमारा योग है, कनेक्शन है। और जो विधि है वो भी बहुत रॉयल है, बहुत रॉयल तरीका है इस योग का, जो हम आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं। रॉयल भी है और सहज भी है। अब जैसे आप माउंट आबू आए तो कई रास्ते हैं माउंट आबू आने के, कई तो पहाड़ों पर चढ़ के भी आते थे पहले ज़माने में। ये रोड तो अभी अंग्रेज़ों ने बनाया, उसके पहले नहीं था, बस यहाँ तो बस्ती तो पहले से ही थी, तो रोड चढ़ के आते थे वो पहाड़। लेकिन फिर ये रोड बना तो अभी आप कैसे आते हो, हाँ उस रोड से आते हो सहज। अभी रास्ता थोड़ा टूट गया, बहुत बारिश पड़ी तो आधा रास्ता आपने देखा ना टूट गया, लेकिन फिर भी छोटी गाड़ियां तो आई सकती है, अभी तो रिपेयर हो भी रहा है, तो ये सहज है। तो राजयोग में भी आत्मा का परमात्मा से जोड़ ये सबसे सहज है, मुश्किल नहीं है। कई समझते हमको तुम्हारा तो योग लगता ही नहीं है, परमात्मा में तो मन लगता ही नहीं है। तो क्यों नहीं लगता है मन, इसका कारण क्या है? अगर हम कारण देखें तो भी तो मूल रूप से तीन कारण हैं। अगर ये पता चल जाए कि इनसे प्राप्तियां क्या होती है तो आप इसको बहुत सहज रूप से समझ सकते हैं और फिर उसको जीवन में ला सकते हैं। तो क्यों नहीं लगता योग? आप परमात्मा को याद करने तो बैठते हैं, बैठते ना, मंत्र जाप करते हैं, माला फेरते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत कुछ जप तप न जाने क्या क्या करते हैं ना, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, मन भटकता है, मन भटकता है, मन भटकता है, ये शिकायत हर एक की है, मन भटकता है। बाकी चीजों के लिए कभी नहीं कहेंगे मन भटकता है, हाँ कहेंगे क्या, मैं फलाने को याद करता हूँ तो मन भटकता है, उस बात को याद करता हूँ तो मन भटकता है, ये शब्द कभी नहीं कहते। लेकिन जब परमात्मा को याद करते हैं तो ये शिकायत आती है मन भटकता है। तो क्या कारण है मन भटकने का? तो सबसे पहला कारण है कि हम खुद को नहीं जानते, क्योंकि परमात्मा में मन लगाने के लिए पहले मैं कौन हूँ ये पता होना चाहिए। अब आप समझते हैं मैं तो एक स्त्री हूँ, मेरा पति है, तो पति में तो मन सहज लग जाएगा क्योंकि आप उसकी पत्नी हैं। मैं माँ हूँ तो मेरा ये बच्चा है, तो बच्चे में योग लग जाता है। कोई भी जहाँ संबंध है वहाँ योग सहज लग जाता है। लेकिन अगर खुद को ही नहीं पहचाना तो परमात्मा में मन कैसे लगेगा? इसीलिए पहले खुद को पहचानना जरूरी है। अभी आपको ये तो बताया ना कि आप कौन हैं, कौन हैं आप? अगर आपसे पूछेंगे आप कौन हैं तो क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, कौन हैं आप? हाँ, अगर आपसे पूछा जाए आप कौन हैं तो क्या जवाब देंगे, कौन हैं आप? कौन है, कौन है? आत्मा है, सोल है। क्योंकि अब तक तो हम अपने आप को देह समझते थे, पर जब सोचते थे परमात्मा को याद करेंगे तो मन क्यों भटकता था? क्योंकि उस देह अभिमान में थे, मैं फलाना हूं, तो व्यक्ति समझते थे, तो व्यक्ति से संबंधित तो कितनी बातें हैं, तो इसीलिए मन भटकता था। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई घटना, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, कई बातों में मन जाता था, तो कहेंगे मन भटकता है। परंतु पहला कारण है मन भटकने का, क्योंकि देह समझते हैं। तो राजयोग माना उस ऊंचे से के साथ योग, पर पहले मैं कौन हूं उसको समझना जरूरी था, क्योंकि आत्मा का ही योग परमात्मा से लगेगा। अगर खुद को देह समझेंगे तो परमात्मा से योग नहीं लगेगा। अब जैसे तार को जोड़ना है, रबर हटाते ही नहीं है, तो रबर सहित होगा तो कॉपर टू कॉपर टू जोड़ा नहीं तो करंट पास कैसे होगी, इसलिए रबर को हटाना पड़े। तो ये देह जो है एक रबर की तरह है, इसको हटाना पड़े माना भूलना पड़े और खुद को एक आत्मा निश्चय करना पड़े, तब मन परमात्मा में लगेगा। फिर दूसरा कारण मन क्यों नहीं परमात्मा में लगता है, क्योंकि परमात्मा कौन है यही पता नहीं। हर एक ने अपनी अपनी तरह से जो कुछ कहा उस अनुसार करने लग पड़ते हैं, परंतु उस परमात्मा का सत्य स्वरूप क्या है, वो कहाँ है, क्या मेरा संबंध है उनसे, कुछ पता नहीं, तो मन कैसे लगेगा। इसलिए मन नहीं लगा। तो आपको ये भी परिचय दिया गया होगा सुबह कि आप कौन है और परमात्मा कौन है। अभी अगर पूछेंगे परमात्मा कौन है तो क्या कहेंगे, वो ज्योति स्वरूप है, वो सदा शिव है, वो कल्याणकारी है, वो निराकार है, वो परम धाम का वासी है। तो जब ये हमको निश्चय हो जाता है तो मन परमात्मा में लगने लगता है, क्योंकि उनका परिचय मिल गया। अब चलो परिचय आत्मा का मिला परमात्मा का मिला, फिर भी मन नहीं लग सकता है। क्यों? क्योंकि एक तीसरा कारण भी है, और वो तीसरा कारण क्या है, मन इतना मैला हो चुका है। अब उस मैले मन में परमात्मा कैसे स्थान लेगा। परमात्मा की याद तो बहुत शुद्ध है, बहुत पवित्र है, जैसे दूध सफेद है, शुद्ध है। तो सफेद दूध है एकदम वाइट शुद्ध है। अब उसको आप बर्तन में रखना चाहते हैं और वो बर्तन मैला है, गंदा है, कुछ में दाग लगे हुए हैं या खटाई लगी हुई है। अब उसमें दूध रखकर उबालेंगे तो क्या होगा, फट जाएगा, वो दूध भी मैला हो जाएगा। तो दूध का बर्तन को कितना साफ करते हैं ना, इतना साफ करते हैं दूध का बर्तन, और किसी काम में नहीं लगाते, कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाते उसमें, ये दूध का बर्तन है। तो इसलिए मन क्योंकि इतना मैला हो चुका है तो उसमें परमात्मा की याद ठहरेगी कैसे। तो क्यों नहीं मन लगता कारण, ये तीन कारण है, खुद को की पहचान नहीं, परमात्मा की पहचान नहीं, और मन इतना मैला हो गया है। तो अब ये किसको, कैसे हम इसको सुधारें। इसको सुधारने के लिए हमें ये समझना होगा कि राजयोग क्या है। पहले खुद को आत्मा समझना, मैं एक आत्मा हूँ ये निश्चय करना, और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को पहचान कर उसको याद करना, इसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो कैसे हम खुद को पहचान कर परमात्मा के यथार्थ रूप को समझ कर हम मन उनमें लगाएं, ये आपको थोड़ा बताएंगे आज। फिर तो अभ्यास तो आपको करना ही है। अब हम फिर देखेंगे, कई समझते हैं कि हम मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन क्या लक्ष्य रखते हैं कि मन को एकदम शून्य बना दे, ब्लैंक, थॉटलेस बना दे। तो वो समझते हैं ये थॉटलेस बन जाना यही मेडिटेशन है। वास्तव में राजयोग मेडिटेशन इज नॉट बिकमिंग थॉटलेस, क्योंकि मन का तो काम ही सोचना है। अब मन जिसका जो काम होगा वो तो वही करेगा ना। अब घोड़े का काम है दौड़ना, आप घोड़े को बिठा दो, हाथ पैर बांध के बैठ जाओ, बिठा दो, तो वो तो इतनी शक्ति है उसमें, घोड़े में हॉर्स पावर कहते हैं। अब उसको बिठाएंगे तो कितना उससे काम ले सकते, वो तो ले ही नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उसको बांध के बिठा दिया। तो इसलिए घोड़े को तो चलाना होता है। एक चंचल बच्चे को अगर आप बांध के बिठा देंगे तो उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, तो मन भी एक चंचल बच्चे की तरह जरूर है, लेकिन उसको कुछ काम चाहिए। अब वो काम राजयोग बताता है, और उस काम को करते हैं मन में तो क्यों नहीं मन लगेगा परमात्मा में। तो इसीलिए विचारों को शून्य करना राजयोग नहीं है। फिर कई कहते हैं इसमें मन के ऊपर क्या दबाव डालना है, दबाव डालना है तो दबाव डालते रहते। हम कहते हैं दबाव भी नहीं डालो, सहज। एक बच्चा अपने माता पिता को कैसे याद करता है, सारा दिन मम्मी पापा करता रहता है। मम्मी नहीं है तो रोता है, और जैसे मम्मी सामने आ गई चुप हो गया और मम्मी को गले लगाया। तो माँ बच्चे का योग तो माँ के साथ है ही है, उसमें मेहनत थोड़ी करता है। अब परमात्मा के साथ ही हमारे सब संबंध है। प्रार्थना में क्या कहते हैं, पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवाले हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो सब संबंधों का वर्णन करते हो परमात्मा के साथ, और फिर कहते मन नहीं लगता। तो इसीलिए मन क्यों नहीं लगता है, कोई दबाव डालने की भी जरूरत नहीं है। संबंध अगर बुद्धि में है तो मन सहज लग जाएगा। फिर तीसरा कारण है, कई समझते हैं कि मन तो वो चंचल है इसलिए मेडिटेशन नहीं कर सकते। लेकिन आप अगर किसी गहरे सोच में चले जाते हो तो उस गहरे सोच में इतने होते हो जो आपको आगे पीछे का कुछ भी सुध-बुध नहीं होती है। हाँ, कई बार कोई आपसे बात कर रहा है और आप तो किसी गहरे सोच में हो, फिर वो आपसे पूछेगा भाई मैंने आपको ये सुनाया, आपने सुना? आप कहेंगे सॉरी मैं जरा कुछ और सोच रहा था। हाँ, मैं कुछ और सोच रहा था इसलिए ये अंदर गया नहीं, हाँ वो इसलिए मैंने आपका ध्यान से सुना नहीं। तो ध्यान से नहीं सुना क्योंकि और बात सोच रहे थे, उसमें मन लगा हुआ था, तो इसलिए रजिस्टर हुआ ही नहीं मन में। परंतु ये रजिस्टर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मन और बातों में, और वो देह अभिमान के कारण है, बॉडी कॉन्शियसनेस के कारण। फिर कई समझते इसके लिए तो आसन चाहिए, हमको आसन चाहिए, अभी तो हम बैठ नहीं सकते हैं, पद्मासन नहीं कर सकते हैं, कोई शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, कई आसन बताते हैं, तो ये तो मेरे से नहीं होगा। तो राजयोग कहता है ये आसन की भी जरूरत नहीं है, पद्मासन भले नहीं कर सको लेकिन पद्म जैसा जीवन बनाओ, कमल जैसा जीवन बनाओ, तो आपका राजयोग बहुत सहज हो जाएगा। फिर कई और बताते हैं, कई कहते हैं इसके लिए चारों ओर का वातावरण बहुत शांत होना चाहिए तभी मेडिटेशन कर सकते हैं। आवाज होगा तो मेडिटेशन कैसे कर सकेंगे, हम कहते हैं वो भी जरूरत नहीं है। आप मंदिर में जाते हो, घंट घड़ियाल बजते रहते हैं, ढोल बजते रहते हैं, कीर्तन चलता रहता है, और आप अपनी प्रार्थना में उसमें ही मन लगा के प्रार्थना कर रहे हो, तो वो बातें तो आप सुनते ही नहीं हो। तो इसीलिए अगर आवाज है चारों तरफ तो भी वो कोई कारण नहीं बन सकता कि मन परमात्मा में न लगे। फिर कई कहते हैं इसमें आंखें बंद करनी पड़ती है, हम कहते हैं आंखें भी भले खुली रखो, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते भी आप ये मेडिटेशन कर सकते हो। इसलिए सिर्फ हमें क्या सोचना है वो आपको पता हो। फिर कई कहते हैं हम तो मंत्र जाप करते हैं, ये बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम बोर हो जाते हैं क्योंकि गुरु ने हमको कहा कि ये मंत्र जाप सारे दिन में 1,00,000 बार करना है। अब ओम नमो शिवाय का जाप चलो मिला, वो मंत्र मिला, और आपने ओम नमो शिवाय सारे दिन में 1,00,000 बार, 1,00,000 बार में ना 100,000, तो आप 100-100 एक बार करते रहेंगे तो 1,000 बार आपको सारे दिन में करना पड़ेगा। तो फिर कई गिनती करते हैं कितनी बार हुआ, कितना हुआ, कितना हुआ, अब 10,000 हुआ, अभी 50,000 हुआ, अभी 80,000 हुआ, अभी 2,000, 20,000 बाकी है। तो योग किसके साथ लगा, किसके साथ योग लगा, परमात्मा के साथ लगा या हाँ गिनती के साथ लगा, किसके साथ, हाँ किस गिनती के साथ लगा। अब गिनती के साथ ही लगा माना परमात्मा के साथ तो लगा ही नहीं। और फिर चलो माला भी फेरते हैं तो भी हाथ में माला है, हाथ को तो काम दिया आपने। फिर कोई मूर्ति है सामने तो आंखों के सामने मूर्ति रखी तो वो आंखों को तो काम दिया, मुख को भी काम दिया जाप करने का, आंखों को काम दिया, उंगलियों को काम दिया, पर मन को काम नहीं दिया। मन को तो काम दिया ही नहीं, वो तो खाली आंखों को उंगलियों को और मुख को काम दिया। अब मन को काम देना है, क्या सोचना है वो हमें पता हो तो फिर बहुत सहज हो जाएगा। पर कई तो फिर यहाँ तक कह देंगे भाई हम वहाँ मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है। तो बहुत मुश्किल क्यों है, कुछ क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं लाते। अब राजयोग मेडिटेशन में क्रिएटिविटी बहुत है, रचनात्मकता, नई नई सोच हम अपने मन में लाते हैं, कई कई क्रिएटिविटी बताते हैं। आप प्रकृति में जाइए, नेचर में जाइए, नेचर के बारे में सोचो, फूल के बारे में सोचो, आप इसके बारे में सोचो, है ना, बहुत क्रिएटिविटी बताते हैं। लेकिन ईश्वर के बारे में सोचो, वो कहते हैं वो नहीं होता है, बाकी बातों के लिए होता है। तो क्यों नहीं होता है, हम आज उसका उत्तर आपको देंगे तो सहज आपका हो जाएगा। तो इसमें छोटी सी बात है कि जैसे बच्चा अपने पिता को याद करता है ना, कैसे करता है, उसको पता है कि मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है। अब हमें ये पता जब चल गया कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, तो उसको याद करना मुश्किल नहीं है। तो कहीं भी मन लगाना है तो मन लगाने के लिए ये चार आधार चाहिए। किसमें भी मन लगाना है तो ये चार आधार चाहिए। अब सारे दिन में कितनी घटनाएं घट रही है, कितनी घटनाएं सुबह से रात तक होती रहती है, पर यू हैव नो इन्फॉर्मेशन। टीवी नहीं खोली, रेडियो नहीं सुना, अखबार नहीं पढ़ी, तो आपको क्या पता क्या हुआ आज, कुछ पता नहीं। पर जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली तुरंत आपका मन वहां जाएगा। तो मन के कहीं भी जाने का पहला आधार है पहचान, इन्फॉर्मेशन, उसकी सूचना, उसके बारे में कुछ जानकारी। जानकारी बहुत जरूरी है। फिर जानकारी केवल नहीं, उसके बाद फिर उसके साथ मेरा संबंध क्या है, क्योंकि अगर संबंध नहीं है तो ठीक है, जानकारी मिली भूल जाएंगे। ट्रेन में बैठे हैं आपस में, आप फ्री बैठे हैं, उनसे पूछेंगे आप कहाँ से जा रहे हो, क्या करते हो, चलो पूछ लिया, उसका स्टेशन आ गया, वो उतर गया या हम उतर गए, भूल गए, हाँ थोड़ी कोई याद रहता है। परंतु जानकारी लेते लेते अगर कोई संबंध निकल आया, अरे हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, एक ही गांव में रहते थे, हाँ ये करते थे, फिर तो बस कोई संबंध निकल आया, या एक ही जाति के हैं, एक ही क्वालिफिकेशंस के हैं, एक ही कोई व्यवसाय है, तो जैसे ही थोड़ा संबंध निकला तुरंत मन उसमें लग गया। फिर संबंध की ओर आगे, फिर उसका कोई गुण पूछा तो वो गुण उसका मिला, मतलब गुणों की बातें चली, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो फिर और भी मन चला गया। फिर उनसे कुछ प्राप्ति हुई, कुछ लेन देन हुई, तो मन तो फिर उसको भूलेंगे थोड़ी। तो चार आधार है मन के कहीं भी जाने के लिए, और जब तक ये चार आधार नहीं है तब तक मन तो जाएगा नहीं, एक सेकंड में निकल जाएगा वहां से। अब ये चारों ही आधार हम परमात्मा से लगाएं। पहला आधार है आत्मा और परमात्मा की पहचान, तो वो आपको आज सुबह मिली है। अब दूसरा आधार है आत्मा का परमात्मा से संबंध, तो संबंधों का वर्णन तो करते हैं लेकिन वो संबंध जुड़ता नहीं है, क्योंकि जुड़े तब तो प्राप्ति हो ना, अभी तार जुड़ी नहीं तो करंट कैसे आएगा। वो तार जोड़ने के लिए रबड़ को तो हटाना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए संबंध को जोड़ने के लिए कुछ समानता चाहिए। और फिर जब संबंध जुड़ गया तो उसके साथ स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर प्रेम नहीं है तो वो संबंध ज्यादा समय टिकेगा नहीं, है ना। शादी तो हो गई पर आपसी मतभेद है, प्रेम नहीं है, तो वो तो संबंध तो टूट ही जाएगा। फिर प्रेम के तीसरी चौथी बात प्राप्ति हो। प्राप्ति कोई वन साइडेड नहीं हो, दोनों तरफ हो, उनसे भी प्राप्ति, फिर उनकी उनको प्राप्ति, ये दोनों तरफ प्राप्ति हो तो वो संबंध स्नेह बना रहेगा। वन साइडेड हो केवल, हाँ, एक बिचारी वो त्याग करती रहे और वो तो प्राप्ति करता रहे और उसको दूसरे को मिले नहीं, पर इट शुड बी बोथ वेज, तो वो संबंध भी कायम रहेगा, प्रेम भी कायम रहेगा। तो इसीलिए ये चारों बातें राजयोग में चाहिए। अब ये आत्मा की आपको क्या पहचान मिली, आप एक आत्मा हो। तो जब भी हम चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, अंदर में ये याद रहे मैं एक आत्मा हूँ। और कैसी आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, मैं चमकता हुआ एक अजब सितारा हूँ। और कहाँ हूँ इस शरीर में, प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। और मेरी क्वालिटीज क्या है, हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप है। इसलिए कहते हैं ना, जब शांति चाहिए तो क्या कहते हैं, अंदर जाओ, अंदर झांको, अंदर देखो, सब आपके अंदर है। अब अपने आपके अंदर है का मतलब क्या है, किसके अंदर है, शरीर के अंदर है शांति, प्रेम, खुशी, शक्ति, ये आत्मा के अंदर है। शरीर को डिसेक्ट करते हैं, डेड बॉडी को डिसेक्ट करते हैं तो क्या निकलेगा, रक्त, पस, हड्डियां, पसलियां, आंतड़ियां, हाँ ये सब निकलेगा, शांति, प्रेम, सुख में निकलेगा क्या। तो अंदर माना किसके अंदर, आत्मा के अंदर। और फिर आत्मा के दो ठिकाने हैं। जब किसी का परिचय पत्र देखते हैं तो उसमें लिखा रहता था, दो एड्रेस है, एक होती है प्रेजेंट एड्रेस और दूसरी होती है परमानेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस तो आपकी कोई गांव की होगी या जहां आपका घर होगा बड़ा, जहां आपके रिश्तेदार फोर फादर्स रहते थे, वो आपका परमानेंट एड्रेस है। और प्रेजेंट एड्रेस है क्योंकि आप कहीं नौकरी के लिए गए हैं तो आप पेइंग गेस्ट के रूप में है या किराए पर मकान लिया, वो आपकी प्रेजेंट एड्रेस है। तो आत्मा की भी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस है। तो प्रेजेंट एड्रेस कौन सी है, ये भ्रकुटी, ये आत्मा की प्रेजेंट एड्रेस है। तो मैं कहाँ हूँ, यहाँ। और फिर मेरी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, परमधाम, जो पांच तत्वों से परे एक अखंड ज्योति का महतत्व है। और फिर उसके बाद मेरा व्यवसाय क्या है, व्हाट्स माय ऑक्यूपेशन, आत्मा का ऑक्यूपेशन क्या है। कहते हैं आत्मा इस संसार रंग मंच पर एक एक्टर है, तो ऑक्यूपेशन हम सबका क्या है, एक्टर बन करके इस सृष्टि रंग मंच पर एक्टिंग करना, अब ये हमारा ऑक्यूपेशन है। अब वो एक्टिंग जो हम करते हैं, तो एक्टिंग तो कितने भी प्रकार की करते हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन के लिए बहुत पहले वो फिल्मों में काम करता था, एक एक दिन में कितनी फिल्मों में शूटिंग करता था। तो सवेरे जाएगा तो शहनशाह की शूटिंग और रात शाम को जाएगा तो कूली की शूटिंग, हाँ। तो शहनशाह भी बनता था और कूली भी बनता था, है ना, एक ही दिन में सवेरे और शाम। पर वास्तव में उसकी आइडेंटिटी क्या है, न वो कूली है न वो शहनशाह है, वो तो एक एक्टर है। तो आत्मा का भी तो यही रूप है ना, आत्मा एक एक्टर है। दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो रिस्पेक्टिव रोल्स हम प्ले करते हैं एक्टर के रूप में, तो कभी हम इस जन्म में माँ बनी, फिर बेटी बनी, या बेटी बनी, माँ बनी, फिर पत्नी बनी, या जो भी मतलब इस संसार में हम हैं, तो ये हमारी अलग अलग रोल्स हैं। पर आइडेंटिटी क्या है कि हम एक आत्मा है, मेरा धाम परम धाम है, यहाँ मैं एक्टर के रूप में आया हूँ, तो मुझे सबसे अच्छे से अच्छा पार्ट बजाना है। दैट शुड बी माई एम इन लाइफ। तो जो भी पार्ट मिला अच्छे से अच्छा बजाओ, लेकिन अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलो कि आप वास्तव में क्या हो। फिर परमात्मा का भी परिचय मिला। जब हम कहते हैं परमात्मा कौन है, तो कहेंगे निराकार ज्योति स्वरूप सदाशिव, वो एक ज्योति बिंदु है और फिर वो परम धाम का वासी है। परम धाम का वासी सर्व गुणों का सागर है, रूप में बिंदु है और गुणों में सिंधु है, सागर है। और कैसे उनके तीन कर्तव्य चलते हैं, परमात्मा के तीन कर्तव्य चलते हैं, परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी जो रचना है, उनसे ये तीन कर्तव्य स्थापना पालना विनाश की कराते, उसका और डिटेल है। अब उसका चिंतन करना वो भी पार्ट ऑफ योग है, पार्ट ऑफ मेडिटेशन है। और फिर संबंध जो आज टूटा हुआ है परमात्मा के साथ, क्योंकि जो कनेक्शन होना चाहिए उसमें कुछ सिमिलैरिटी चाहिए। जैसे रेडियो स्टेशन हमें चाहिए तो हमको अपनी रेडियो की सुई को उसी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर रखना पड़ेगा। अब परमात्मा के साथ हमारी ना फ्रीक्वेंसी मैच होती है, ना वेवलेंथ, ना कुछ भी मैच नहीं होता। क्यों? हम कहते हैं परमात्मा आप तो बहुत ऊंचे हो, और खुद को क्या कह दिया, मैं तो नीच हूं, मैं तो पापी हूं। आरती करते हैं ना सब, तो आरती में क्या कहते हैं, मैं मूरख कल खामी कामी पापी कृपा करो भरता। आप तो रहम के सागर हो, रहम दिल हो, करुणा सिंधु हो। तो परमात्मा की इतनी स्तुति गाएंगे, फिर कहेंगे हम तुम्हारे बच्चे हैं, और तो बच्चे इतने नालायक और पिता इतना ऊंचा, तो देखो वेर इज द मैचिंग। बच्चा भी तो पिता के समान होना चाहिए ना। अगर पिता के समान नहीं है तो नाम तो पिता का बदनाम होता है, यदि पिता इतना ऊंचा और बेटा ऐसा। तो हम देखें तीन सिमिलैरिटीज है आत्मा और परमात्मा के बीच में। पहली सिमिलैरिटी है स्वरूप में समानता। अब मनुष्य का बच्चा तो मनुष्य ही होगा ना, कोई गधा घोड़ा थोड़ी पैदा होगा मनुष्य से, मनुष्य ही होगा। तो इसी प्रकार आत्मा भी ज्योति स्वरूप है तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, दोनों का स्वरूप एक जैसा है। फिर दूसरा घर भी एक ही है, बच्चा पैदा होता है तो उसकी एड्रेस भी तो वही होगी ना जो उनके माता पिता की एड्रेस है। तो आत्मा की भी तो एड्रेस वही है परम धाम, एक ही घर के वासी हैं, एक जैसा स्वरूप है। और तीसरा गुणों में भी समानता है, जो परमात्मा के गुण है आत्मा के भी वही गुण है, आत्मा के भी वही गुण है, लेकिन अंतर क्या है, गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है, नो डिफरेंस इन द क्वालिटी, लेकिन क्वांटिटी में डिफरेंस जरूर है। क्वांटिटी में डिफरेंस माना वो शांति का सागर है, तो आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा अपने शांति को भूल जाती है कि मैं वो शांत स्वरूप हूँ, अपने को अशांत समझती है देह अभिमान में, बॉडी कॉन्शियसनेस में आने के कारण। तो इसीलिए अभी ये संकल्प करके तीन बातों की समानता को लाते, मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ, वो शांति का सागर है, तो मैं शांत स्वरूप हूँ। अवेयरनेस चाहिए, अंदर से जागृति चाहिए। वो प्रेम का सागर है तो मैं प्रेम स्वरूप हूँ, वो सर्वशक्तिमान है तो मैं शक्ति स्वरूप हूँ। इसीलिए कई लोग आत्मा को परमात्मा का अंश समझते हैं। अंश क्यों कह देते हैं, अंश का मतलब ये नहीं कि टुकड़ा ना, अभी एक कपड़ा है तो इसका टुकड़ा निकाले कि धागा निकाला, तो धागा निकालते जाएंगे तो ये तो इसका तो जो अस्तित्व है वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन अंश का मतलब है गुणवत्ता वही है, क्वालिटी इज द सेम बट क्वांटिटी इज डिफरेंट। परमात्मा गुणों का सागर है, आत्मा उस गुण की स्वरूप है, पर देह अभिमान में आकर के वो भूल जाती है। इसीलिए आत्मा को पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, देव आत्मा अलग अलग नामों से याद करते, उनके वही संस्कार बन जाते। पर ओरिजिनल संस्कार हमारे वही है जो परमात्मा के संस्कार है, इसीलिए अंश कहते हैं। अब उसी प्रकार परमात्मा हमें क्या कहते हैं, तुम अंश नहीं हो लेकिन तुम वंश हो। बिग डिफरेंस बिटवीन अंश और वंश। हाँ, एक हिसाब से वो वंश एक अंश भी होता, लेकिन वो वंश है, ही हैज राइट, पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार। तो परमात्मा की पास जो प्रॉपर्टी है उसका अधिकार हम बच्चों का भी है। अब वो अधिकार क्या है, वो प्रॉपर्टी क्या है, वो सर्व गुणों का सागर है। तो मेरा ये अधिकार है, ये गुण मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी परमात्मा से, हे प्रभु शांति दो, ये मांगते नहीं है। लेकिन क्या अंदर में सोचते हैं, शिव बाबा आप शांति के सागर हो, तो मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप हूं। मांगना माना भिखारी, हे प्रभु आप शांति के दाता हो, मुझे थोड़ी शांति दो। ये गीत गाते ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासी हम। तो भगवान कहते बूंद के प्यासे क्यों बनते हो, सागर के किनारे जाकर कहेंगे क्या, हे सागर एक बूंद हमें दे दो, क्या करेंगे, मांगेंगे क्या सागर से बूंद, क्या सूरज के आगे जाकर कहेंगे हे सूरज मुझे एक ही किरण दो। हाँ, वो तो भंडारा खुला हुआ है, जितना चाहो उतना लो, लेकिन अपने खिड़की दरवाजे तो खुले रखो। सागर के किनारे जाकर जितना आपका आपकी क्षमता होगी उस अनुसार आप ले सकेंगे। अब छोटा सा एक कटोरा ही ले गए तो उससे क्या होगा, आप तो पूरा बड़ा बर्तन भी लेके जा सकते हैं, जितना चाहिए लो, वो तो भरपूर है। इसीलिए परमात्मा को क्या कहते हैं, दाता, देने वाला दाता, जब भी देता तो छप्पड़ फाड़ के देता, देंदा दे लेंदा थक जाए। देने वाला थकता नहीं है लेकिन लेने वाले थक जाते हैं। तो अभी लेने वाले थकना नहीं है, हमें भरपूर लेना है परमात्मा से। तो हम कैसे राजयोग करते हैं, राजयोग की ये चार स्टेजेस है। पहली स्टेज है आत्मा और परमात्मा का चिंतन, क्योंकि ये चिंतन करने से क्या होता है, मन का बर्तन साफ होगा, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही मन ग्रहण कर लेता है, वही बातें फिर उसी मन के अंदर वो स्वरूप बन जाती है। तो वही मन सोचेगा, सारे दिन में किसने क्या कहा क्या किया, वो मन वो सोचता है। लेकिन इन सब बातों को भूलकर आत्मा का और परमात्मा का चिंतन करना, ये मन रूपी पात्र को साफ करना है, क्योंकि ये बहुत शुद्ध विचार है। मैं कैसे शांत स्वरूप हूँ, सोचो कितनी शांत आत्मा हूँ मैं, कैसे मैं शांति के सागर परमात्मा की संतान हूँ, मेरा धाम कितना ऊंचा शांति का धाम है। वो चिंतन करते ही मन शुद्ध हो जाता है। फिर परमात्मा का चिंतन, वो मेरे पिता हैं, परमात्मा मेरे परम पिता हैं, ये पिता का अधिकार आत्मा महसूस करती है। तो हम ये नहीं कहेंगे शिव बाबा आप शांति के सागर है वो मुझे शांति दो, नहीं, आप शांति के सागर हो, वो शांति के सागर से, शांति के सूर्य से, वो शांति की किरणें आप ले रहे हैं, वो बूंदे क्या पूरा भरपूर कर रहे हैं अपने आप को और एकदम शांत हो जाते हैं। तो इसीलिए मन का भटकना बंद हो जाता है, क्योंकि आप उस क्रिएटिव माइंड से चिंतन करते हो। फिर दूसरा कदम है परमात्मा से रूढ़यान, भगवान से बातें करो, करते हो भगवान से बातें, जो भगवान से बातें करते हो हाथ उठाए, अच्छा बातें करते हैं, क्या बातें करते हैं, हाँ जो बातें नहीं करते कभी भगवान से वो हाथ उठाए, हाँ सब बातें करते हैं लेकिन क्या बातें करते हैं। कई कहते हम तो भगवान से बहुत बात करते लेकिन भगवान का जवाब नहीं आता, हाँ कई ऐसे कहते जवाब नहीं आता, अब जवाब क्यों नहीं आता, इसका भी कारण होगा ना। आप टेलीफोन पर बात करते पर टेलीफोन नंबर ही ठीक नहीं है, आपने टेलीफोन तो घुमाया पर टेलीफोन लगाई कहाँ, कनेक्शन हुई नहीं, हुई नहीं तो कैसे वो भी जवाब देगा, पहले कनेक्शन तो हो। और कनेक्शन होने लिए समानता चाहिए, अब समानता तो है नहीं, वो पावन और मैं पतित, वो तो निराकार और मैं साकार अपने आप को समझ रहा हूँ, वो तो परम धाम का निवासी और मैं संसार का प्राणी, देयर इज नो मैचिंग, मैचिंग चाहिए, फ्रीक्वेंसी शुड मैच, तभी तो मिलन होगा ना। इसीलिए वो नंबर चाहिए। पहले देखो वो जब ये एसटीडी कॉल्स होते थे, अभी तो इतना सब सहज हो गया है बहुत, तो पहले तो मैनुअल होता था, वो टेलीफोन एक्सचेंज में कहते थे, फिर वो टेलीफोन एक्सचेंज मिलाता था, कितनी सारी बातें थी, परंतु अभी तो कितना सहज है। हाँ, बस आपने अपना आपके मोबाइल पर आपने वो नंबर घुमाया और वो नंबर उसको पहुंच गया। लेकिन फिर चलो दूसरे शहर में अगर हमको करना था तो क्या करते थे, एसटीडी के लिए 0 डायल करते थे, 0 डायल किया तो लोकल कॉल्स सब कट जाती थी और फिर वो उसके साथ जुड़ता था। फिर इंटरनेशनल कॉल करना होता था तो 00 घुमाते थे, याद है सब कि भूल गया। इंटरनेशनल कॉल्स के लिए फिर 00 घुमाते थे, तो अभी भी है। तो इसीलिए परमात्मा से अगर कनेक्शन चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहला क्या कनेक्शन, पहला कैसे कनेक्शन जोड़ना, ये बॉडी कॉन्शियसनेस को हटाना है। फिर दूसरा क्या करना है, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस से देह अभिमान आता है, तो इसलिए पहला जीरो क्या है, मैं एक आत्मा हूं, तो पहला जीरो घुमाया तो लोकल लाइंस कट, मैं आत्मा हूं। तो देह और देह के जो भी संबंध है, जो भी बातें हैं, वो सब कट गई। फिर दूसरा आपने घुमाया तो फिर इंटरनेशनल कॉल हो गया, तो जैसे परम धाम से जुड़ गया, क्योंकि इस संसार या तो इस संसार में भी चलो कहीं भी बुद्धि गई, पर तीसरा जीरो घुमाया तो परमात्मा तक पहुंचेगा। अब तीसरा जीरो कौन सा है, तीसरा जीरो है कि मेरे सब संबंध एक परमात्मा के साथ है। अब उसका फिर डिटेल है, और धीरे धीरे ये महसूस होता है कि वो हमारी जो स्थिति है वो एकाग्र बनती जाती है, एकाग्रता आती है, और एकाग्रता आने आते आते कुछ अनुभूति हमें होने लगती है। अब हम इसका विस्तार करेंगे। तो पहला है आत्मा परमात्मा का चिंतन। तो क्या करना है इस चिंतन में, अपने को आत्मा ज्योति बिंदु निश्चय करके उस ज्योति स्वरूप परमात्मा के नाम रूप गुण इन सब का चिंतन करना है। ये चिंतन करना बहुत जरूरी है, इसको हम कहते हैं मनन करना, चिंतन करना, और फिर मंथन करना, फिर मगन होना, ये भी अलग अलग स्टेजेस है। तो इसलिए ये चिंतन करना है, और उस चिंतन के आधार से हम परमात्मा में अपना मन लगा सकते हैं। ये 3 जीरोस को ऐड करना, मैं आत्मा बिंदु तो देह अभिमान हटा, परमात्मा भी बिंदु तो और सब देह के संबंध सब हटे, और तीसरा मैं परम धाम वासी तो तीसरा जीरो घुमाया, परम धाम से डायरेक्ट लाइन लग गई आपकी। अब उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, 4 बातें हमें भगवान से बिल्कुल नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, कई जो हम करते आए हैं आज तक वो नहीं करनी है, मेडिटेशन में हम ये नहीं करते। पहली बात क्या करते थे, हम भगवान से कुछ न कुछ मांगते थे ना, हे प्रभु शांति दो, शक्ति दो, दया करो, मकान दिलाओ, नौकरी दिलाओ, बच्चा दो, जाने क्या क्या करते हैं, बहुत कुछ मांगते हैं। अब भगवान कहते हैं मांगना बंद करो, ये हो सकता है कि मांगना बंद करो कि नहीं, मांगेंगे, मांगना बंद करो। भगवान ने इतना दिया है हमें, उसका धन्यवाद तो करो। क्योंकि जब तक धन्यवाद नहीं किया वो प्रेम नहीं जुटेगा, ये तो स्वार्थ हो गया, खाली मांगते ही रहते हो भगवान से। इतना भगवान ने दिया, दुनिया में इतने लोग हैं जिनको ये भी नसीब नहीं है जो हमको है, तो और मांगने का हम सोचे भी नहीं। तो इसीलिए पहली बात हम कहते हैं, कुछ भी मांगो नहीं भगवान से, है ना। लेकिन क्या करो उसकी जगह, ईश्वर को धन्यवाद भले करो, थैंक यू बाबा। सवेरे उठकर सबसे पहले भगवान को थैंक्स दो, इतना सुंदर सवेरा दिया, हाँ मुझे जगाया, कई तो रात को सोते सोते मर जाते हम तो फिर भी अभी जिंदा है, भगवान ने नया जीवन दिया है, तो थैंक द फादर, परमात्मा को धन्यवाद दो, मांगो कुछ नहीं। कई बार कहते ना भगवान कुछ सुनता नहीं है, क्योंकि हम मांगते रहते हैं। अभी एक बच्चा मांगा, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए, मम्मी वो चाहिए, किसी गए वहाँ मॉल में, मम्मी हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो मम्मी तो सुनती है, कुछ जवाब नहीं देती है, क्योंकि ये सब क्या लेके देंगे इनको, उसको तो सब कुछ चाहिए, तो इसीलिए चुप रहती है। तो इसलिए हम भी क्या करते हैं छोटे बच्चे के, भगवान ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन संतुष्ट रहना है, जो है उसमें संतुष्ट रहना है, और जो है उसका धन्यवाद क्यों नहीं करो। ये भी नहीं टेकिंग फॉर ग्रांटेड दैट बिलोंग्स टू यू, नो, वो आपका थोड़ी है, वो तो भगवान ने दिया है। आरती में ये भी तो गाते हैं, ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो सचमुच अर्पण किया या ऐसे ही कहा, मेरा क्या लागे कहा, ये तो कह दिया, लेकिन फिर जैसे आरती पूरी, ये मेरा वो मेरा 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 मेरा, ये कर देते ना। तो इसीलिए मेरा मेरा कहना, ये भी तो फिर वो आरती अनुसार तो हुआ नहीं ना। इसलिए कुछ भी मांगो नहीं, उसकी जगह धन्यवाद। फिर दूसरा क्या करते हैं, कई कहते हैं हम कोई वस्तु नहीं मांगते हैं, भगवान से कुछ भी मांगते नहीं है, लेकिन हम भगवान से गुण मांगते हैं। हे भगवान मुझे शांति दो, हे भगवान मुझे शक्ति दो, गाते ना गीत भी, इतनी शक्ति तू देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, शक्ति दो, शांति दो, सुख दो, प्यार दो, न जाने क्या क्या मांगते हैं, गुण मांगते हैं। अब भगवान कहते हैं गुण भी मांगने की चीज नहीं है, यू नो इंग्लिश में कहते हैं वैल्यूज आर कैनॉट बी टॉट बट दे आर कॉट, यू कैंट टीच वैल्यूज, क्योंकि जो वैल्यू आप सिखाते हैं, किसको आप सिखाते हैं कि क्रोध नहीं करना है, पर खुद ही क्रोध कर रहे हैं तो आप क्या सिखा रहे हो, सिगरेट नहीं पीना है और खुद ही सिगरेट पी रहे हैं तो क्या सिखा रहे हो। तो सिखाओ वो जो आप खुद करो, है ना। बताते ना महात्मा गांधी के पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर गई, और बच्चे उसका गांधी जी को कहा कि बापू जी ये बेटा मेरा बहुत गुड़ खाता है, बहुत ज्यादा गुड़ खाता है, चॉकलेट खाता है, ये खाता है, गुड़ खाता है, मीठा मीठा बहुत खाता है, आप इनको मना करो। तो गांधी जी ने कहा अच्छा, एक हफ्ते के बाद, ऐसे कई कहानियां उस प्रकार बताते हैं। तो एक हफ्ते के बाद उसने कहा बेटा इतना गुड़ खाना अच्छा नहीं है, दांतों के लिए ठीक नहीं है इतना मीठा खाना। तो गुरु, तो बच्चे ने कहा हाँ ठीक है बापूजी, नहीं खाऊंगा। तो माँ को लगा ये बात तो एक हफ्ता पहले भी बोल सकते थे, एक हफ्ते के बाद क्यों बोला। तो कहा मैं भी खाता था वो मैं खुद ही इतना खाता था तो मैं दूसरे को कैसे कहूँ। तो जो हम खुद करते हैं वो दूसरे को कैसे कह सकते हैं ये नहीं करो। तो अगर नहीं कहना है तो पहले खुद तो नहीं करो। सो वैल्यूज कैनॉट बी जस्ट टॉट, दे आर कॉट, वॉट अदर्स आर डूइंग दैट आई कॉपी, दे कैनॉट बी टॉट। तो इसीलिए वैल्यूज को हम महत्व देते हैं, परंतु हम भगवान से ये मांगते नहीं है, वो आपके पास ही है। शांति आपका अपना स्वभाव है, शांति कोई मांगने की चीज नहीं है। तो ये स्वभाव जब हम समझते हैं तो वो तो मेरे पास ही है, लेकिन परमात्मा के सानिध्य में उसको अनुभव करना है। उसको आप अनुभव करना। इसलिए ये नहीं कहेंगे शिव बाबा शांति दो, शिव बाबा उनको याद करो, वो बिंदु में सिंधु परमात्मा, और उनसे आप शांति के सागर हो, मैं आत्मा आपकी संतान शांत स्वरूप, और वो शांति को अपने अंदर भरपूर कर दो। तो गुण भी मांगने की जरूरत नहीं है। फिर तीस मांगो नहीं, अधिकार से अपनाओ, क्योंकि वो आपकी ही चीज है। इट इज विद इन यू बट जस्ट अवेकन इट विद इन यू फ्रॉम विद इन। फिर तीसरी चीज हम क्या मांगते हैं भगवान से, माफी मांगते हैं। हे भगवान मेरी भूलों को मत देखो, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। अब क्षमा तो करे भगवान, फिर करो। जैसे बच्चा होता ना, कोई भूल करेगा मम्मी सॉरी, फिर करेगा मम्मी सॉरी, सारा दिन सॉरी सॉरी करता रहेगा, तो मम्मी कहेगी तुम सुधरोगे या नहीं, या सॉरी सॉरी करते रहोगे? क्योंकि सॉरी सॉरी का समझा कि बात हो गई, लेकिन सुधरता तो है नहीं। तो सॉरी के साथ फिर ये भी तो कहो ना, मम्मी आई विल नॉट डू इट अगेन, मैं फिर नहीं करूंगा। तो माँ कहेगी पहले कहो मैं फिर नहीं करूंगा, अभी वो तो कहता नहीं, बस सॉरी। तो हम भी क्या करते हैं, भूले करते रहते, फिर भगवान माफ कर दो, भगवान माफ कर दो। पर्यूषण करते ना, पर्यूषण में माफी मांगते हैं ना, कन्फेशन, क्रिश्चियनिटी में कन्फेशन आता है, आरती में भी है, मेरे पाप हरो देवा, तो ये भी अब माफी मांगते हैं भगवान से, क्षमा मांगते हैं। अब भगवान क्या कहते हैं, क्षमा नहीं मांगो क्या? क्षमा जरूर मांगो, माफ जरूर करवाओ, लेकिन साथ में प्रतिज्ञा भी करो कि मैं फिर दोबारा नहीं करूंगा। अब हमने समझो कुछ भी गलत काम किया, अंदर मन तो खाता है। मन क्यों खाता है? क्योंकि आत्मा का वो ओरिजिनल नेचर नहीं है। हमने गुस्सा किया, बहुत जोर से गुस्सा किया, क्या क्या गालियां बोल दी, फिर मुझे रियलाइज हुआ, अरे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। क्यों आता रियलाइजेशन, मुझे नहीं बोलना चाहिए था? क्योंकि ये मेरा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। आप कितना समय गुस्सा कर सकते हो लगातार एट अ स्ट्रेच, कितना समय गुस्सा कर सकते हो? कर सकते हैं। अगर बहुत 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 किया तो ब्रेन की नस फट जाएगी, या हार्ट अटैक आ जाएगा। या बॉडी ऑल्सो के नॉट टॉलरेट, आप समझ लो। तो इसीलिए वास्तव में वो हमारा स्वभाव है ही नहीं। इसीलिए आप शिव बाबा को जो सच्ची बात है वो कह दो। वास्तव में कोई भी आप भूल करते हो, आपको पता चलता है ये गलत है, तो आप वो गलती भगवान के आगे कह दो। फिर एक डिटर्मिंड थॉट लो, एक प्रतिज्ञा करो, मैं ये फिर नहीं करूंगा। यू हैव दैट पावर, इसको विल पावर कहते हैं, वो सातवीं शक्ति, शक्ति सातवां गुण है वो आत्मा के अंदर, वो विल पावर है। बट यू हैव टू मेक दैट डिटर्मिंड थॉट, मैं नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, आप अपनी रोज की वो बना सकते हो लिस्ट, आज मुझे क्या करना है, बनाते ना, टाइम सेटिंग करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट करते हैं, आज ये करना है, फिर जो हो गया उसको टिक मार्क करते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट है, उसी प्रकार थॉट मैनेजमेंट भी है। तो वो थॉट मैनेजमेंट के आधार से क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्योंकि सोच के आधार पर ही शब्द निकलेंगे, वही कर्म होगा, वही होगा। तो इसीलिए परमात्मा से रू रिहान माना कि वो बातें करो जो भगवान को भी पसंद हो ना। तो केवल माफी नहीं मांगो, प्रतिज्ञा करो। और चौथी बात क्या, ये तो फिर बहुत ही पता है कौन करते हैं, जिनको अंदर में ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, वो उनकी भाषा कैसी होती होगी, हे भगवान उसका सत्यानाश करो, हे भगवान उसने मुझे बहुत दुख दिया है उसका सत्यानाश करो। अब भगवान क्यों सत्यानाश करेगा उसका? वो दिखाते ना कि एक व्यक्ति था, उसने बहुत तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गई, लेकिन उसको अपने पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या थी। तो भगवान को कहता है कि मुझे ये दो, परंतु भगवान ने कहा कि आपको तो दूंगा पर आपके पड़ोसी को दो दूंगा। तो उसने कहा भले कोई बात नहीं, तो कहा मुझे मकान दो, तो उसको दो मकान मिला, उसको गाड़ी मिली, उसको दो गाड़ी मिली। फिर कहा अरे मेरे से तो डबल उसको मिल रहा है, तो उसने कहा भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो मेरी एक आंख फोड़ दो, तो उसकी फिर उसकी तो दोनों आंखें फूट जाएगी तो ईर्ष्या के कारण उसने ये सब कह दिया। पर ये रियलाइज नहीं हुआ कि जो मैं एक मांग रहा हूं उसको डबल मिलेगा। तो इसीलिए किसी दूसरे का अहित कभी भगवान से नहीं कहना, क्योंकि दूसरे के लिए खड्डा खोदना माना खुद गिर जाना, वो ग्रहचारी आपको भी आ जाएगी। जैसे किसी की बद्दुआ उसको मिले ना मिले आपको मिल जाएगी। कई बार होता है ना, हम अपनी अपनी बहुत महिमा गाते हैं, मैंने तो कभी एक गोली भी नहीं खाई अपने जीवन में, और अगले दिन देखो बुखार आ गया अपनी ही नजर लग जाती है। इसीलिए परमात्मा कहते ऐसे किसी के लिए भी बद्दुआ नहीं करो, बद्दुआ अगर करेंगे वो बद्दुआ हमें ही लगेगी। तो उसकी बजाय क्या करो, उसका भी भला हो। हाँ मुझे याद है, हम ट्रकों के पीछे देखते हैं बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, लेकिन हमने ये भी कहीं पढ़ा बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला। हाँ बुरी नजर वाले तेरा भी हो भला, माना उसको बद्दुआ नहीं दी कि तेरा मुंह काला, ये नहीं बद्दुआ दी, लेकिन क्या कहा तेरा भी हो भला। तो तेरा भी हो भला, तो शिवा हमेशा कहते अब कार्यों पर भी उपकार करो। तो ये सब बातें परमात्मा की याद में हम रूढ़िहान में लाते हैं। तो आध्यात्मिक शक्ति के स्रोत परम सत्ता के साथ सर्व संबंधों से रूढ़िहान करना, क्योंकि परमात्मा के साथ आत्मा के सब संबंध है। कई ऐसे ना भाई, एक मैं आपको बताऊं, मैं बॉम्बे में रहती थी, कुलाबा में ही रहती थी, तो कैसे मेरे घर के मेरी नेबर थी, मेरा घर मोहिनी मैन शिंकुलाबा सेंटर के वहीं था जी जी। तो फिर वो एक माता थी, उसका बहुत सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर था घर में, मार्बल का बनाया था, श्री कृष्ण की मूर्ति थी। तो मूर्ति थी तो रोज उसकी पूजा करती थी, और यही कहती थी मुझे बच्चा दो बच्चा दो, बच्चा नहीं था, बेटियां तो हो गई थी लेकिन बेटा नहीं था। तो आखिर में कई सालों के बाद जब घर गई, तो मैंने उसके घर गई तो मैंने कहा वो मंदिर कहाँ गया, बहुत सुंदर मंदिर था आपके पास, श्री कृष्ण की इतनी प्यारी मूर्ति थी, वो कहाँ गया आपका मंदिर। कहते मैंने सब निकाल दिया। मैंने कहा क्यों, क्योंकि भगवान ने मुझे बेटा नहीं दिया, बेटा नहीं दिया। तो मैंने कहा अगर तुम श्री कृष्ण को ही बेटा मान लेती होती तो यशोदा का बेटा बना था नहीं ना उसका बेटा, फिर भी यशोदा ने अपना ही बेटा माना ना, देव की तो वो तो जेल में दिखाते हैं, लेकिन यशोदा ने माना। तो भगवान को आप बेटा नहीं बना सकती हो, वास्तव में सब संबंध परमात्मा के साथ हम जोड़ सकते हैं। तो एक एक संबंध का क्या स्वरूप होता है वो सब हम मेडिटेशन में करते हैं। तो ये सब क्रिएटिविटी है, पिता रूप में क्या कहो, शिक्षक रूप में उनको क्या कहो, वो सतगुरु है तो उस रूप में हम क्या कहें, हर एक के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन अलग अलग होती है। अब ये है सारा उसका डिटेल। तो इसीलिए सब संबंध है परमात्मा से, और जब ये सब संबंध जोड़ते हैं तो रू रिहान करना, उनसे अंदर में कॉन्वर्स करना बहुत सहज हो जाता है। और अंदर में विश्वास है कि हम परमात्मा को जो कुछ भी सुनाएंगे वो किसी और को नहीं सुनाएगा। कितने सब हम क्या क्या भगवान को सुनाते वो किसी और को सुनाते हैं क्या, इसलिए मनुष्यों को सुनाने की बजाय केवल एक परमात्मा को ही सुना, फिर उनके ही उनको अपना साथी बनाओ तो भय मुक्त रहेंगे। भगवान जिसका साथी है उसको क्या रोकेगा आंधी तूफान, ये सारी बातें हम मेडिटेशन के अंतर्गत करते हैं, उनकी सुरक्षा महसूस होगी, जैसे छत्र छाया वो हमारे ऊपर हमारी रक्षा कर रहा है ना? जैसे मोदी जी के आगे देखो कितने उनके अंगरक्षक हैं, तो भगवान हमारा जैसे रक्षक बन जाता है और हमें आगे पीछे ऊपर साइड में ये सब जैसे रक्षा करता है, ये अनुभव होता है भगवान मेरे साथ है, और फिर उतनी शक्ति की अनुभूति होती है, और धीरे धीरे हमारा मन एकाग्र होने लगता है क्योंकि हम उसी बारे में सोचते हैं। तो इसलिए परमात्मा के हर गुण की गहराई में जाकर एकाग्र हो जाओ, एक एक गुण की गहराई में जाओ, शांति के सागर की गहराई में चले जाओ, प्रेम की गहराई में चले जाओ, एक एक गुण की जो गायन करो परमात्मा का, जितना परमात्मा के गुणों का गायन करेंगे उतना उनसे प्रेम अनुभव होगा। अभी वो प्रेम क्यों नहीं अनुभव होता, क्योंकि गुण तो गाते हैं फिर कुछ मांग लेते हैं, तो मांग लिया तो प्रेम खत्म, वो स्वार्थ हो गया, क्योंकि मिला नहीं तो भगवान तुम निर्दयी हो, भगवान तुम भैरे हो, भगवान तुम ये हो, तुम वो हो, तुम हमारा सुनते नहीं हो। तो बाबा कहते हैं कि ये सब नहीं, उनके प्रेम में खो जाओ। इसको हम कहते हैं भगवान को केवल याद नहीं करो परंतु उसके प्यार में खो जाओ, महिमा गाते 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 उसमें खो जाओ। तो ये खाली याद करने वाली चीज़ नहीं है, उसमें समाने वाली चीज़ है। और जब ये अनुभूति होती है तो ऑटोमेटिकली लगता है कि हमारे अंदर के पाप धुल रहे हैं। जैसे सूरज की किरणें कॉन्वेक्स लेंस से फोकस होती है और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल पॉइंट है उस पर एक कागज़ रख दो तो क्या होगा, वो किरणें फोकस होकर के उस कागज़ को जला देती है, वो सूरज का रिफ्लेक्शन उस कागज़ पर आता है, इतना शक्तिशाली होता है जो कागज़ जलने लगता है। तो आत्मा महसूस करते कि हमारे अनेक जन्मों के पाप भस्म होते हैं और उसी के आधार से चौथी शक्ति का अनुभव होता है, वो अनुभूति, वो प्रेम का जो अनुभव, वो शांति का अनुभव। अगर एक सेकंड के लिए भी वो गहराई का अनुभव हुआ परमात्मा से, वो अनेक जन्मों का पाप भस्म करता है और आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। जैसे बैटरी आत्मा की रिचार्ज हो गई, तो राजयोग क्या है, वो चार्जर का रूप है, परमात्मा रूपी पावर हाउस से चार्जर द्वारा आत्मा को चार्ज किया और उससे कैसे परिवर्तन आता है, आत्मज्ञान मिला, आत्मा निश्चिंतन किया, आत्मनिरीक्षण किया, आत्मविश्लेषण किया, ये सब, और फिर आत्म संयम किया, आत्मबोध हो गया, रियलाइजेशन हुआ और उससे फिर आत्म परिवर्तन हुआ। और आत्म परिवर्तन होने से फिर विश्व परिवर्तन भी होता है, क्योंकि हमारी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति, वातावरण और सारा विश्व। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नारा है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो कैसे करेंगे मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के लिए क्या सोचना है कि मैं एक आत्मा हूँ, न मैं ये शरीर हूँ, न ये कोई वस्त्र हूँ, पर मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, अभिनेता हूँ सृष्टि मंच पर, और शरीर से न्यारा होकर अपने आप को एक आत्मा ज्योति बिंदु समझकर सर्व संबंध परमात्मा से जोड़ना है। और महसूस होगा कि कैसे आत्मा उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ती है, तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी, शांति की अनुभूति होगी, प्रेम की अनुभूति होगी, परमात्मा से सब गुणों को अपने अंदर भर सकेंगे। तो कई समझते ना, आत्मा परमात्मा बन जाएगी, परमात्मा नहीं बनेगी लेकिन परमात्मा के जो गुण हैं वो आत्मा में भर जाएंगे। और आत्मा कैसे मनुष्य से देवता बन सकती है, सर्व गुणों में संपन्न बन सकती है, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी बन जाती है उस परमात्मा से सब संबंध जोड़ने से, उनसे वो गुण शक्तियां प्राप्त करने से। अब इतना है इसका, लेकिन इसका डिटेल बहुत है, वो तो आप सेवा केंद्रों पर जाकर के और समझेंगे तब आपको अनुभूति होगी। ठीक है, अब हम यहीं समाप्त करते हैं, आप इसको और आगे समझना, हमारे डॉक्टर सचिन आ रहे हैं। बस अभी हम 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठते हैं, जो आपने सुना उसी पर ही आप चिंतन करना। ठीक है, ये लाल प्रकाश हमें परम धाम की याद दिलाता है कि मैं आत्मा उसी धाम के वासी हूँ, परमात्मा शिव पिता की संतान हूँ, हाँ गीत गीत में। तो बस 2 मिनट अब अंदर जाइए, अपने आप को पहचाने, मैं कौन, एक दिव्य ज्योति। अपने आप से बातें कीजिए, मैं आत्मा एक दिव्य ज्योति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, ब्रकुटी के मध्य विराजमान हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये शरीर एक वस्त्र के समान है, अब इस वस्त्र से न्यारा होकर 5 तत्वों से पार शांति के धाम में जाना है, और उसी धाम में खुद को परमात्मा के निकट अनुभव करना है। उस शांति के सागर पिता की मैं संतान, शांत स्वरूप हूँ। चले जाओ शांति की गहराई में, और महसूस करो शांति की शक्ति को, और भरपूर हो जाओ। एक न्यारापन, प्यारापन अनुभव करो, अति हल्का, सारा बोझ परमात्मा को दे दिया। मैं एक दिव्य शक्ति हूँ, और इसी शक्ति को स्वयं में समाकर फिर वापस लौटे। 1 सेकंड में भी इतना मेडिटेशन हो सकता है, और ऐसा ही दिन भर में आप अभ्यास करें तो आप महसूस करेंगे कि कैसे आपका आपके अंदर वो वापस आ जाएगी, वो आध्यात्मिक शक्ति, और आपकी दृष्टि वृत्ति बिल्कुल बदल जाएगी, जीवन ही बदल जाएगा।